एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक फिर से आज आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। आज का मेरा शीर्षक है मिस्र देश को जाना। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हम सबों के संग हो, तेरे पवित्र आत्मा का आशीष दे ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके और तेरे संवाद को समझ सके और तेरे इच्छा के अनुसार चलने सके। पिता मेरे संग हो, मुझे तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ दे कि मैं तेरा वचन को तेरे सामर्थ के साथ तेरे इच्छा अनुसार बतला सकूँ। और मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो कि वे लोग तेरे वचन को सुनकर तेरे संवाद को समझने सके और तेरे प्रेम में आगे बढ़ने सके। पिता उन हरेक को तू आशीष दे। इस बिंदी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, मेरा आज का संवाद मेरे पिछले संवाद के बाद से है। मेरा पिछला संवाद का शीर्षक था बुद्धिमान उसके तारे देखे। मेरा आज का संवाद उसी पिछले संवाद के बाद से शुरुआत होता है। आज के संवाद का शीर्षक है मिस्र देश को जाना। पिछले संवाद में हमने सुना था कि किस रीति से परमेश्वर ने पूर्व के ज्योतिषियों को बुद्धि दिया, शास्त्रों से प्रेरित किया, स्वप्न में निर्देश दिया और अपना तारा दिखाया। वे लोग यीशु के तारे को देखे और उससे मिलने गए। वे लोग सचमुच बुद्धिमान थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का निर्देश माना। वे लोग यीशु से मिलकर सचमुच आशीषित हुए। आज हम बुद्धिमान लोगों की भेंट के आगे की कहानी को सुनेंगे। आज का संवाद में हम जानेंगे कैसे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से यूसुफ, मरियम और यीशु को आगे अगुवाई करता है। परमेश्वर अपने पुत्र को बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को देता है। वह स्वर्गदूतों को आदेश दिया था कि जब तक यीशु अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता है, अपना जीवन पापी मनुष्यों को उद्धार करने के लिए स्वयं बलिदान नहीं कर देता है, उसका रक्षा करें। शैतान शुरू से ही चाहता था कि वह परमेश्वर के पुत्र का घात करे। वह हेरोदेस राजा के द्वारा इस उद्देश्य को पूरा करना चाहता था, परंतु परमेश्वर ऐसा होने नहीं दिया। सारा परमेश्वर के हाथों में नियंत्रण था और आज भी वह नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है कि वह अपने बच्चों का रक्षा करे। हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे और उस पर भरोसा करे। वह जानता है कि हमारे लिए क्या भला है और वह निर्देश भी देता है, जिस तरह वह यूसुफ को निर्देश दिया। परमेश्वर अपने पुत्र को रक्षा करने के लिए यूसुफ को स्वप्न दिया कि वह उसे मिस्र देश ले जाए। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। उसका वचन हमें कहती है, वह तेरे पांव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी नहीं ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यह हम भजन संहिता 121 का 3 और 4 में पाते हैं। परमेश्वर अपने सब जनों के लिए अपना एक स्वर्गदूत देता है। वह हमारी रक्षा करता है। बाइबल कहती है भजन संहिता 34:7 में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यीशु के प्रति राजा हेरोदेस की चाल को ये ज्योतिषी लोग समझ नहीं सके थे। जब उनकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया तो वे वापस यरूशलेम जाने के लिए तैयार हुए, ताकि वहां पहुंचकर अपनी सफलता का विवरण राजा को बताए। परंतु स्वप्न में उन्हें एक ईश्वरीय संदेश मिला कि राजा के साथ अब कोई संबंध ना रखे। यरूशलेम को एक ओर छोड़ते हुए वे दूसरे मार्ग से अपने देश की ओर चले गए। इसी प्रकार से यूसुफ को भी चेतावनी भरा संदेश मिला कि मरियम और बच्चे के साथ मिस्र को भाग जाए। और स्वर्गदूत ने कहा, जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। बिना किसी देरी के यूसुफ ने आदेश को मानते हुए और अधिक सुरक्षा के लिए उसी रात यात्रा पर चल दिया। उन ज्योतिषियों के द्वारा परमेश्वर ने यहूदी जाति के ध्यान को अपने प्रिय पुत्र के जन्म की ओर खींचा। यरूशलेम में उनकी पूछताछ ने लोगों की जिज्ञासा को और यहाँ तक कि हेरोदेस के डाह को भी बढ़ा दिया, जिसने याजकों और रबियों को इस पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया कि वे देखें कि मसीह के जन्म के विषय में जो विशेष घटना घटी है उसके लिए भविष्यवाणी क्या कहती है। शैतान ने यह ठान लिया था कि संसार के लिए आए उस ईश्वरीय प्रकाश को वह बुझा देगा और उसने अपनी कपटता की सारी शक्ति उद्धारकर्ता को मिटा देने में लगा दिया। परंतु वह जो ना तो कभी सोता और ना ही ऊँगता है, वह अपने प्रिय पुत्र को बड़े ध्यान से देख रहा था, जिसने इज़राइल के लिए आकाश से मन्ना बरसाया, जिसने अकाल के समय एलिया को भोजन खिलाया, जिसने नवजात बच्चे और मरियम को विदेशी राज्य में शरण लेने का प्रबंध किया और मूर्ति पूजक देश के ज्योतिषियों की भेंटों द्वारा यहोवा ने उनकी मिस्र की यात्रा और परदेश में उनके जीवन यापन के साधन का प्रबंध करा दिया। उद्धारकर्ता का स्वागत करने वालों में ये ज्योतिषी लोग पहले थे। उनकी भेंट पहली भेंट थी जो मसीह के चरणों में अर्पित की गई थी। उस भेंट के द्वारा सेवा करने का कैसा सुनहरा अवसर उन्हें प्राप्त हुआ था। हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक दिए हुए भेंट का सम्मान करने में परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। उसकी सेवा करने में इसका उच्चतम योगदान होता है। यदि हमने अपना हृदय यीशु को दे दिया है तो अपनी भेंटें भी उसको समर्पित करेंगे। हमारा सोना और चांदी इस धरती पर हमारी सबसे मूल्यवान वस्तु, हमारा उच्चतम आत्मिक और मानसिक समर्पणता, इन सब को खुले मन से उसे अर्पित कर देंगे जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यरूशलेम में हेरोदेस बड़ी अधीरता से उन ज्योतिषियों के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा था। समय बीतता गया और वे वापस नहीं आए तो उसके मन की शंका बढ़ गई। मसीह के जन्म स्थान का पता बताने में रबियों की अनिच्छा, उसे ऐसा लगने लगा कि यह उन लोगों का षड्यंत्र है और ये ज्योतिषी लोग जानबूझकर उसकी अनदेखी कर रहे हैं। यह सोच सोच कर वह पागल हो गया था। उसकी वह चाल तो असफल हो गई थी, परंतु बल प्रयोग का उपाय अभी शेष था। इस बालक राजा के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि ये अहंकारी यहूदी देखते रह जाएंगे किस प्रकार से यह राजगद्दी पर एक दूसरे सम्राट को बिठाने की तैयारी कर रहे हैं। वे उसका परिणाम भी देखेंगे। बड़ी शीघ्रता के साथ अपने सैनिकों को हेरोदेस ने उस आदेश के साथ बैतलहम भेजा कि 2 वर्ष तक के सारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाए। दाऊद के नगर के बहुत से घरों में हृदय को दहला देने वाला वह दृश्य नजर आने लगा जिसे लगभग 600 वर्ष पहले भविष्यवक्ता ने कहा था। सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती क्योंकि वे जाते रहे। इस विपत्ति को यहूदियों ने स्वयं आमंत्रित किया था। यदि वे परमेश्वर के समक्ष विनम्रता और विश्वास के साथ चल रहे होते तो वह राजा के क्रोध को हानिकारक होने से रोक देता। परंतु वे लोग अपने पापों के कारण परमेश्वर से अलग हो गए और पवित्र आत्मा जो उनका ढाल था उसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने पवित्र शास्त्र का अध्ययन इस इच्छा के साथ नहीं किया था कि वे परमेश्वर की इच्छाओं को स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने भविष्यवाणियों का अध्ययन अपने स्वयं को सम्मानित कराने के लिए और यह दिखाने के लिए किया था कि किस प्रकार से परमेश्वर अन्य जातियों को तुच्छ समझता है। यह उनका घमंड से भरा अहंकार था कि मसीह एक राजा के रूप में आ रहा है जो अपने शत्रुओं को परास्त कर देगा और मूर्ति पूजकों को अपने क्रोध द्वारा कुचल डालेगा। उनके इस प्रकार के व्यवहार ने शासन के अधिकारियों की घृणा को भड़काने में घी का काम किया। मसीह के आने के उद्देश्य को उनके द्वारा गलत रूप में प्रस्तुत करने के कारण शैतान ने उद्धारकर्ता को नष्ट कर डालने की योजना बना डाली, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, वह विपत्ति उन्हीं पर टूट पड़ी थी। अत्याचार और उत्पीड़न का यह कार्य उसके अंतिम कार्यों में से एक था जिसने हेरोदेस के शासन को अंधकारपूर्ण बना दिया। हजारों अबोध बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल देने के तुरंत बाद ही वह स्वयं अपने ऊपर दंड लाने का कारण बना जिसे कोई रोक नहीं सकता था। अंततः उसकी बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई थी। यूसुफ जो अभी तक मिस्र में ही था, परमेश्वर के स्वर्गदूत द्वारा संदेश पाकर वापस इसराइलियों के देश में वापस आ गया। जहाँ तक दाऊद के सिंहासन का वारिस होने के लिए यीशु का प्रश्न है, यूसुफ ने अपना घर बैतलहम में बनाने की सोचा, परंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि अर्खिलाउस अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर यहूदिया पर राज कर रहा है तो वह वहां जाने से डरा कि अर्खिलाउस भी अपने पिता हेरोदेस के पश्चिमों पर चल रहा होगा और वह यीशु को हानि पहुंचा सकता है। हेरोदेस के पुत्रों में अर्किलाउस का चरित्र अपने पिता से अधिक मिलता जुलता था। उसके सिंहासन पर पदरूढ़ होते हुए समय यरूशलेम में पहले ही उपद्रव हो चुका था, और उधर यहूदियों के हजारों निरपराध अबोध बच्चों का रोमी सैनिकों द्वारा वध कर देना, आग में घील डालने का काम किया। एक बार फिर यूसुफ को सुरक्षित स्थान पर चले जाने का निर्देश दिया गया। वह अपने पुराने घर नाजरत में आ गया, और यहीं पर लगभग 30 वर्षों तक यीशु ने अपना जीवन बिताया, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नाजरी कहलाएगा। हेरोदेस के एक बेटे का शासन गलील पर था, परंतु यहूदिया से भी अधिक उसके राज्य में विदेशी लोग रहते थे, इसलिए यहूदियों से संबंधित विषयों पर लोगों की रुचि बहुत कम थी, और यीशु के अधिकारों की बातों पर उन शासकों में कोई डाह की भावना नहीं भड़कती थी। संसार के उद्धारकर्ता के इस धरती पर आने का स्वागत इस प्रकार से किया गया था। मुक्तिदाता बालक को इस पृथ्वी पर सुरक्षित रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र के लिए मनुष्यों पर भरोसा नहीं कर सकता था, यद्यपि अपने उद्धार के लिए उन्हें ही उसका कार्य पूरा करना था। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आदेश दिया कि वे मसीह के साथ रहें और तब तक उसकी रक्षा करें जब तक कि वह इस पृथ्वी पर अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेता और उनके हाथों मारा नहीं जाता जिनको बचाने के लिए वह पृथ्वी पर आया। हम होशे 11 का 1 में पाते हैं, यहाँ पर बाइबल कहती है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। परमेश्वर अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हाँ प्यारो, परमेश्वर अपने बच्चों को मिस्र से भी बुलाता है। वह अपने बच्चों को मिस्र में भी शरण दिलाता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वह इसराइलियों को जो याकूब के संतान थे मिस्र देश से छुड़ा ले आया। वे मिस्र में शरण लिए थे। वे वहाँ लगभग 430 वर्ष थे, तब परमेश्वर ने उन्हें अपने बड़े सामर्थ से उन्हें वहाँ से छुड़ा कर लाया था। परमेश्वर यूसुफ को निर्देश देता है स्वप्न देकर कि कब उसे मिस्र जाना है और कब उसे मिस्र से निकलना है। यूसुफ परमेश्वर का निर्देश का आज्ञा पालन करता है। यूसुफ और मरियम यीशु के अंग रक्षक थे। वे अनपढ़ किसान थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें चुना था क्योंकि वे परमेश्वर का काम करने के लिए इच्छुक थे और मन से तैयार थे। परमेश्वर का उद्देश्य उनसे पूरा हुआ। परमेश्वर हमारा भरण पोषण करने वाला है। उसने एलिया को अकाल के समय रोटी खिलाया। उसने इजरायली लोगों को मरुभूमि में 40 साल तक मन्ना खिलाकर तृप्त किया। परमेश्वर सरापत की स्त्री और उसके बेटे और एलिया को 3.5 वर्ष अकाल के समय भोजन खिलाया। हाँ प्यारो, परमेश्वर हमारा भरण पोषण करने वाला है। वह हमारे जरूरतों को पूरा करेगा यदि हम उसके मार्गों में चलते हैं। वह यूसुफ और मरियम और बालक यीशु के जरूरतों को पूरा किया। पूर्व के ज्योतिषी लोग सचमुच में बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने यीशु को वह भेंट दिए जिसका यीशु योग्य है और जिसका यूसुफ और मरियम को जरूरत थी। यीशु हमारा भेंट से प्रसन्न होता है और ग्रहण करता है जब हम उसे अपने पूरे हृदय से देते हैं, उसे हम अपना सर्वोच्च दे दें। हम उसे क्या दे सकते हैं? हम उसे अपना हृदय दे सकते हैं। यदि हम उसे अपना हृदय दे देते हैं तो हम उसको अपनी भेंट भी समर्पित करेंगे और वह उसे स्वीकार करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप परमेश्वर को अपना सर्वोच्च, अपना हृदय और अपना भेंट देने का निर्णय बनाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए। तू हमारा रक्षक है, तू हमारा भरण पोषण करने वाला है पिता परमेश्वर। तो यूसुफ और मरियम और यीशु को उनकी जरूरतों को चीज दिया, तू उनकी रक्षा किया। तू आज भी अपने लोगों के संग है, तू उनको रक्षा करता है और उन्हें बचाएगा। उन्हें जो जरूरत है पिता, तू उसे पूरा करेगा। हमें तेरे पास आने के लिए मदद कर, हमें तुझ पर भरोसा रखने के लिए मदद कर पिता। हमें बुद्धि दे, हमें तेरा पवित्र आत्मा का आशीष दे और उसके द्वारा हमें चला। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन।
जब तेरा प्यार मेरे दिल में बसा, जब तेरे साथ मैं चलने लगा, जब तेरा प्यार मेरे दिल में बसा, जब तेरे साथ मैं चलने लगा। मैंने कहा हे प्रभु, मैंने कहा हे प्रभु, मैं तुझको सराहूंगा। जब तेरा प्यार मेरे दिल में बसा, जब तेरे साथ मैं चलने लगा।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।